ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाल और चीन की राजनीतिक दलों के बीच संयुक्त परामर्श संयंत्र का पहला सम्मेलन हुआ संपन्न। आज देशभर में 3,093 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2,108 हुए संक्रमण मुक्त। 8 संक्रमितों की हुई मृत्यु। 2072 साल के शक्तिशाली भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त दरबार हाईस्कूल और रानी पोखरी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न। कल होगा उद्घाटन। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 4,78,00,000 से अधिक। 11,24,000 से अधिक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल और चीन की राजनीतिक दलों के बीच आज संयुक्त परामर्श संयंत्र का पहला सम्मेलन संपन्न हुआ है। हिमालय पार बहुआयामिक संपर्क संजाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विषय में वर्चुअल माध्यम के जरिए आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा लिखित मंतव्य में इस सम्मेलन से दोनों देशों द्वारा आपसी लाभ लेने का विश्वास व्यक्त किया गया। साथ ही राष्ट्रपति भंडारी ने विश्वास दिलाया कि नेपाल की भूमि को किसी भी हालत में चीन विरोधी गतिविधि के लिए प्रयोग होने नहीं दिया जाएगा। मौके पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा भेजे गए पत्र में भी बेल्ट एंड इनिशिएटिव का जल्द ही क्रियान्वित होने का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच के संबंधों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज देशभर में 3,093 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देशभर में संक्रमितों की कुल संख्या 1,39,129 हो गई है। आज ही 2,108 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देशभर में संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या 96,609 पहुंच गई है। इसी तरह आज ही संक्रमण के कारण 8 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देशभर में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 765 हो गई है। बहरहाल देश के 76 जिलों में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 41,775 है। इनमें से 28,196 लोग होम आइसोलेशन में हैं और 13,559 लोग संस्थागत आइसोलेशन में हैं। इसी तरह गंभीर लक्षण के 273 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि 78 लोगों का इलाज वेंटिलेटर में रखकर किया जा रहा है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश गौतम ने दी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कोरोना महामारी के विरुद्ध की लड़ाई में सरकार और जनता के बीच संबंध को सुदृढ़ बनाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आज स्वास्थ्य मंत्री ढकाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की इस जटिल परिस्थिति में सरकार और जनता के बीच विश्वास का संबंध स्थापित होने की आवश्यकता है। साथ ही मंत्री ढकाल ने 649 स्थानीय तहों, जिलों और प्रदेश के स्तरीय अस्पताल की स्तरोन्नति कर 6,200 बेड की व्यवस्था करने की जानकारी दी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल ने दी है। बता दें कि रूपंदेही लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भीम अस्पताल भैरवा, दांग की बेल झुंडी स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अस्पताल और भेरी अस्पताल बांके को कोरोना विशेष अस्पताल में परिणत किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ।
ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। गृह मंत्रालय ने त्योहारों के अवसर पर कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका से अपने माथहत के निकायों और प्रशासन को सचेत रहने का निर्देश किया है। नेपाल में कोरोना का संक्रमण तीव्र रूप में बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम, नियंत्रण, इलाज और व्यवस्थापन में चुनौतियों के मद्देनजर त्योहारों को केंद्रित कर सुरक्षा योजना बनाने का निर्देश सुरक्षा निकायों को दिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कानून विपरीत गतिविधि में संलग्न लोगों पर कार्यवाही करने का निर्देश सुरक्षा निकायों एवं सभी प्रमुख जिलाधिकारियों को निर्देश किया है। 2072 साल में आए महाभूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई काठमांडू की दरबार हाईस्कूल और रानी पोखरी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। इन दोनों संरचनाओं का कल राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के कार्यों को प्रभावकारी बनाने के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही उन्होंने मुख्य सचिव शंकर दास वैरागी और सचिव से विचार विमर्श किया है। मंत्री पोखरेल ने प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय कर परिणाम मुखी नतीजा प्राप्त करने का संबंधित सभी निकायों को निर्देश किया है। नेपाली सेना की प्रतनापति समन्वयात्मक बैठक आज सम्पन्न हुई है। समन्वयात्मक बैठक का समापन करते हुए प्रधान सेनापति पूर्ण चन्द्र थापा ने कहा कि नेपाली सेना की कार्यशैली में आए सकारात्मक परिवर्तन से संगठन की पद्धति और प्रणाली को और अधिक ऊर्जावान बनाया है। साथ ही प्रधान सेनापति थापा ने कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए सरकार वाली निकायों के साथ समन्वय करते हुए आवश्यक पूर्व तैयारी करने का निर्देशन दिया है। नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला ने वर्तमान सरकार पर नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने का आरोप लगाया है। ताप्लेजुंग में संचार कर्मियों से की गई बातचीत में नेता सिटौला ने कहा कि मौलिक हक और सर्वोच्च के परमादेश विपरीत कोरोना के इलाज से सरकार पीछे हट रही है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमितों के इलाज और जोखिम व्यवस्थापन के लिए सरकार को गंभीर बनना चाहिए कहा है। कैलाली में प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद विश्वकर्मा और प्रहरी जवान राम बहादुर साउद की हत्या में संलग्न होने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया है। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस ने हत्या में संलग्न धनगढ़ी उप महानगर पालिका 10 के रोहित राणा, राजेंद्र राणा, सुरेश राणा, राजकुमार राणा, राम निवास राणा, दलराम राणा और वार्ड नंबर 11 के राम गोपाल राणा को सार्वजनिक किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाली के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिलीप सिंह देवबा ने यह जानकारी दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,78,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,04,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, वहीं 11,24,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या 84,66,000 से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,25,000 से अधिक है। वहीं भारत में 76,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 52,51,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वियतनाम में कई सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ की मार झेल रहा है। बाढ़ की वजह से हुए भूस्खलन में सेना के बैरक में जमीन दोज हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से लापता हुए सेना के 11 जवानों की तलाश अभी भी जारी है, जबकि जमीन दोज हो गए बैरक से क्वांग ट्राई प्रांत में अब तक सेना के जवानों की 11 लाशों को निकाला जा चुका है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रात में भूस्खलन की आवाज किसी बम धमाके की तरह सुनी थी। पिछले हफ्ते वियतनाम के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक वियतनाम में कम से कम 70 लोग मारे जा चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेपाल और चीन की राजनीतिक दलों के बीच संयुक्त परामर्श संयंत्र का पहला सम्मेलन हुआ संपन्न। आज देशभर में 3,093 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2,108 हुए संक्रमण मुक्त, 8 संक्रमितों की हुई मौत। 2072 साल की शक्तिशाली भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त दरबार हाईस्कूल और रानी पोखरी का पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न, कल होगा उद्घाटन। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या 4,78,00,000 से अधिक, 11,24,000 से अधिक की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।